नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित चावला और आप सबका स्वागत करता हूं तलाश इंडिया क्राइम्स के सातवें एपिसोड में। आज की कहानी उस सीरियल किलर की है जिसके क्राइम को देखते हुए ये तय था कि उसको सजाए मौत मिलेगी। ये सब के बावजूद ये सीरियल किलर जेल से भाग जाता है। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ उसका भाई जो उसके साथ जेल में बंद था वो भी भाग जाते हैं और इधर उधर भटकते हैं, छुपते फिरते हैं और बाद में उड़ीसा में उनको गिरफ्तार किया जाता है। उनकी गिरफ्तारी के बाद इंक्वायरी बैठती है और इंक्वायरी से पता चलता है कि जिस जेल से भागे थे वहां के वार्डन और जेलर की मिलीभगत थी जिसकी वजह से ये लोग वहां से फरार हो पाए। इस क्रिमिनल के साथ बाकायदा बड़े बड़े लोग, नेता, पुलिस वाले आसपास घूमा करते थे और इसके पास से एक डायरी भी मिली थी जिस डायरी में बड़े बड़े नेता और पुलिस वालों का नाम था जो इसके साथ उठते बैठते थे। ये डायरी खुद ये सीरियल किलर मेंटेन करता था। पर सोचने की बात यह है कि जिस क्राइम में बड़े बड़े नेता पुलिस वाले इन्वॉल्व हों तो वो ईमानदारी से वो इन्वेस्टिगेशन होता नहीं है। और जितने नाम थे और ये कहा भी जाता है कि उसमें उस वक्त की रूलिंग पार्टी के कई नेताओं के नाम भी थे, तो बाद में ये सारे के सारे नाम दबा दिए गए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से नहीं हुई। हाँ, ये जरूर है कि 2-3 बड़े बड़े पुलिस अफसर्स को सस्पेंड किया गया था। कोर्ट ने इस सीरियल किलर से सवाल किया कि तुमने इतने सारे कत्ल क्यों किए, इसकी वजह क्या है। तो इस पर ये सीरियल किलर कहता है कि मुझे फिल्मों ने इंस्पायर किया। जब मैं फिल्में देखता था तो जो विलेन थे वो मुझे हीरो नज़र आते थे और मैं उन हीरो जैसा बनना चाहता था। तो ये सीरियल किलर जुर्म की दुनिया में कदम रखता है फिल्मों से प्रेरित होके। ये कहानी है मद्रास, जो आजकल चेन्नई के नाम से जाना जाता है, ये वहाँ की कहानी है। और ये कहानी है ऑटो शंकर की। और ये ऑटो शंकर उस वक्त का बहुत ही खूंखार क्रिमिनल माना गया है। ऑटो शंकर का नाम था गौरी शंकर। और इसका नाम ऑटो शंकर क्यों पड़ा ये आगे आपको कहानी में पता चल जाएगा। तो ये कहानी है गौरी शंकर की। गौरी शंकर 1955 में विल्लोर नाम का एक गांव है तमिलनाडु में, वहाँ इसका जन्म होता है और 15-20 साल वहाँ बड़ा होता है, वहाँ रहता है। और उसके बाद ये मद्रास आता है रोजी रोटी की तलाश में। उस वक्त मद्रास में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी जितनी आज है। और शुरुआत में इसको पेंटर की नौकरी मिलती है, तो अलग अलग पेंटिंग्स बनाया करता था। और ये भी कहा जाता है कि ये फिल्मों के पोस्टर्स भी पेंट किया करता था। इसकी ज़िंदगी बढ़िया आराम से चल रही होती है, पेंटिंग कर रहा होता है। इसके साथ इसका भाई मोहन और उसका एक साला भी रहता है साथ में। उसी वक्त मद्रास में एक ऐसी चीज़ होती है जो इसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल देती है। तमिलनाडु सरकार अल्कोहल बिक्री, शराब बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी लगा देती है, मतलब शराब बिक्री को बैन कर देती है तमिलनाडु में। सरकार ने अच्छी नीयत से ये शराबबंदी लगाई थी पर लोगों पे इसका अलग असर पड़ा तो सरकार को शराबबंदी हटानी पड़ी, तो शराब पे से बैन हट गया। उसके बाद इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लगा कि वापस से शराब क्यों शुरू की गई, वहाँ की महिलाएं वगैरह इसका प्रोटेस्ट करने लगी, तो सरकार को फिर से शराब पे बैन लगाना पड़ा, जिसकी वजह से तमिलनाडु में इलीगल एल्कोहल की स्मगलिंग शुरू हो। तो इस पर गौरी शंकर देखता है कि उसके आसपास के लोग शराब की स्मगलिंग में उतर गए हैं और बहुत ही बढ़िया फटाफट पैसा कमा रहे हैं। तो गौरी शंकर जो पेंटिंग करता था वो भी बिजनेस में उतरने की सोचता है ताकि वो भी शराब की स्मगलिंग शुरू करे और जल्दी जल्दी पैसा कमाने लगे। इस शराब की स्मगलिंग की वजह से पुलिस की चेकिंग वगैरह बहुत बढ़ गई। तो वहाँ का जो एक गैंग था वो एक आइडिया निकालते हैं कि शराब की जो स्मगलिंग है, शराब की जो तस्करी है, वो ऑटो में की जाए, क्योंकि ऑटो मद्रास की हर गली में जाती है तो वो स्मगलिंग की रीच मद्रास शहर में बढ़ा सकते थे। और ऑटो में स्मगलिंग भी आसान थी क्योंकि शराब की बोतलें कहीं भी ऑटो में छुपाई जा सकती थी। तो ये अब गौरी शंकर भी सोचता है, डिसाइड करता है कि शराब की स्मगलिंग वो भी ऑटो में करेगा। तो वो एक ऑटो ले लेता है। पहली बार इस तरह से वो जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखता है। इस तरह शराब की स्मगलिंग करके ये शराब की बोतलें बेचता था जो दोगुना तिगुना दाम लगा के इंक्रीज प्राइस पर, मतलब ज़्यादा कीमत पर बेचता था। पर गौरी शंकर दूसरी गैंग के लिए काम करता था, ये स्मगलिंग करता रहा। और धीरे धीरे इसने अपने भाई मोहन को और मोहन का साला और एक दो दोस्त और को साथ में जोड़ा, तो ये 4-5 लोग मिलके अपना खुद का एक गैंग बनाते हैं। इनकी शराब की तस्करी चलती रही और धीरे धीरे गौरी शंकर अच्छा खासा पैसे बनाने लगा। गौरी शंकर को नाच गाने का शौक था, फिल्मों का शौक था, तो आसपास की इलाकों में मद्रास के छोटे छोटे डांस बार्स में जाता था। और वहाँ जाके उसको ये लगा कि शराब की तस्करी के अलावा और भी धंधे किए जा सकते हैं, डांस बार तो नहीं लेकिन लड़कियों का धंधा किया जा सके। तो मद्रास के एक इलाके में एक लॉज लेता है और वहाँ पर लड़कियों को रखना शुरू करता है और उनसे धंधा करवाता है। इसी दौरान जिस डांस बार में ये ज्यादातर जाया करता था वहां पर उसको एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है, लड़की को भी इससे मोहब्बत हो जाती है और कुछ टाइम बीतता है, उसके बाद पता चलता है कि वो लड़की किसी और लड़के के साथ डांस बार से भाग जाती है। गौरी शंकर को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो लड़की से बहुत प्यार करता है। उसके बाद गौरी शंकर उसके दोस्त ढूंढना शुरू करते हैं और लड़की और लड़का को दोनों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद गौरी शंकर उस लड़की को अपने इलाके में लाता है जहां वो रहता था और उस लड़की को तब तक पीटता है जब तक वो लड़की अपना दम नहीं तोड़ देती और फिर उस लड़के को जिंदा जला देता है। लड़की की लाश को अपने ही के इलाके में दीवार में सीमेंट से चुनवा देता है, लड़के की जली हुई लाश को ले जाके समुंदर में फेंक देता है। ये पहला गौरी शंकर का बड़ा क्राइम था, मर्डर का, वो भी दो मर्डर, लड़की का और लड़के का। टाइम बीतता जाता है और धीरे धीरे गौरी शंकर का नाम क्राइम की दुनिया में बड़ा होने लगता है, उसका क्राइम की दुनिया में दबदबा बनने लगता है, लोग उसको पहचानने लगते हैं। गौरी शंकर को समझ में आ जाता है कि इस क्राइम की दुनिया में और बड़ा बनने के लिए उसको पुलिस की और वहाँ के नेताओं की ज़रूरत भी पड़ेगी। और इस बीच में सरकार शराबबंदी को वापस ले लेती है और जिसकी वजह से उसका शराब का धंधा भी बंद हो जाता है। गौरी शंकर पुलिस वालों के साथ उठना बैठना शुरू करता है क्योंकि कोई भी इलीगल धंधा पुलिस के मदद के बिना नहीं हो सकता, तो पुलिस की ख्वाहिशें पूरी करता है, उनको पैसा देता है, उनके साथ उठना बैठना शुरू हुआ। और दूसरी तरफ वो नेताओं की कमजोरी को पकड़ता है और अपने अड्डे से जो लड़कियां उसके पास होती थी वो नेताओं को एक एक करके सप्लाई करना शुरू करता है। इससे गौरी शंकर को ये फ़ायदा होता है कि इसकी पहुँच नेताओं तक और बढ़ने लगती है और उनसे दोस्ती भी हो जाती है। वो होशियार इतना था कि जब कोई नेता लड़की के साथ आता था या लड़की को भेजता था उनके पास तो वो उनकी तस्वीरें भी खींच लेता था ताकि आगे कोई मुश्किल पड़े तो नेता को तस्वीर दिखा के ब्लैकमेल करके या किसी तरीके से वो नेता इनके काम में आए। और कई पुलिस वालों के साथ भी उसने ऐसा ही किया और वो इस चीज़ की डायरी मेंटेन करता था। और कोई फंक्शन होता था तो उसके घर पर पुलिस वाले और नेता आया करते थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक 1988 में एक एक करके लड़कियों के गायब होने की खबर आने लगी है, एक साथ 9 लड़कियां गायब होती और घर वाले पुलिस पे जाके कंप्लेन करते हैं तो पुलिस कहती है कि लड़कियां अपनी मर्जी से किसी के साथ भाग गई होंगी, गई चली गई होंगी और ये चीज़ को रफा दफा कर देते हैं। इसी दौरान 2-3 घटनाएँ होती हैं। गौरी शंकर के एक LB रोड और एक पेरियार नगर पे कोठे होते थे जहाँ पे लड़कियों को रखा करता था। LB रोड के कोठे पर एक दिन 3 लड़के आए और वहाँ के एक लड़की को शहर घुमाने के लिए ले जाना चाहते, तो इन्होंने गौरी शंकर से और उसके आदमियों से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। इसकी वजह से इसमें बड़ी गर्मागर्मी हुई और हाथापाई हो गई। गौरी शंकर को अपने आप पर इतना घमंड था, वो किसी से डरता नहीं था, उसने इन तीनों लड़कों को पीटना शुरू करा, वो भी बहुत सारे लोगों के सामने, और तब तक पीटता रहा जब तक ये तीनों मर नहीं गए। फिर ये तीनों लाशों को पेरियार नगर ले जाता है और दीवार में चुनवा देता है आगे ऊपर से सीमेंट लगाकर। तो एक तरफ वो 9 लड़कियों की गायब होने की खबर उठती थी तो पुलिस दबा देती थी क्योंकि पुलिस को शायद पता था कि 9 लड़कियों के गायब होने के पीछे किसका हाथ था और वो गौरी शंकर के खिलाफ जाना नहीं चाहते थे। अब दूसरी तरफ ये 3 लड़के के गायब होने की खबर आई और इन 3 लड़कों के दोस्तों ने भी ये खबर दी कि जिनसे ये आखिरी बार मिले थे कि ये लोग LB रोड गए थे, किसी कोठे में गए थे और वहाँ के आसपास के लोगों ने LB रोड पे जो लोग थे आसपास उन्होंने भी दबी आवाज़ में बताया कि वहाँ पे मार पिटाई हुई थी और इनको मारने के पीछे किसका हाथ था, लेकिन पुलिस ने तब भी कुछ नहीं किया। कुछ दिन बीतते हैं, फिर एक दिन उसी इलाके की एक शराब की दुकान के सामने से एक लड़की गुजर रही होती है। शाम का समय था, अंधेरा था और उस लड़की को एक ऑटो से किडनैप करने की कोशिश की जाती है। इस लड़की को जबरदस्ती ऑटो में बिठाया भी जाता है और लड़की अपनी हिम्मत दिखाती है और वो ऑटो से कूद जाती है। ये एक गुजराती लड़की होती है जो मद्रास अपनी पढ़ाई करने आई होती है। वहाँ से बचने के बाद ये भाग कर पदहवास पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वहाँ पर अपनी पूरी कहानी बताती है कि किस तरह उसे किडनैप करने की कोशिश की जाती है ऑटो में। पुलिस वो लड़की से पूछताछ करते हैं कि तुमने और कुछ देखा है और कुछ सुना है, तो कहती कि हाँ ऑटो में 3 लोग होते हैं और वो बार बार एक आदमी का नाम ले रहे होते हैं और जो ऑटो चला रहा होता है। पुलिस पूछती क्या नाम लेते हैं तो लड़की बताती कि उसका नाम लेते हैं ऑटो शंकर। तो ये पहली बार पुलिस के दस्तावेजों में एक नाम आता है ऑटो शंकर। अब तक वो गौरी शंकर था और ऑटो शंकर के नाम से कोई वाकिफ नहीं था। ये जानते हुए कि ये अटेम्प्ट टू किडनैप का केस था, पुलिस कुछ भी नहीं करती। दबाव बढ़ता है और फिर पहली बार 27 जून 1988 को पुलिस ऑटो शंकर को गिरफ्तार कर लेती है। और कमाल की ये बात है कि ऑटो शंकर को जमानत मिल जाती है और वो छूट जाता है। और जमानत की वजह ये थी कि पुलिस ने इसका केस अदालत में ठीक से रखा नहीं था, क्योंकि वो ऑटो शंकर के दबाव में होते हैं, वहाँ के नेता, वहाँ की पुलिस वाले के राज ऑटो शंकर के पास होते हैं, तो ये अच्छे से केस कोर्ट में पेश नहीं करते और इसको जमानत मिल जाती है। तो इस तरह ऑटो शंकर पुलिस और पॉलिटिकल कनेक्शन की मदद से बाहर आ जाता है। और उस वक्त तमिलनाडु में पॉलिटिकल उथल पुथल भी चल रहा होता है, और उस टाइम के चीफ मिनिस्टर होते हैं एमडी रामचंद्रन। सेंट्रल गवर्नमेंट एमडी रामचंद्रन की सरकार गिरा देती है और वहाँ पर गवर्नर रूल लगा देती है, और वहाँ पर उस वक्त गवर्नर होते हैं पीसी अलेक्जेंडर। तो ये गवर्नर रूल जब लगता है तो वो नौ लड़कियों के माँ बाप फैमिली वाले गवर्नर साहब के साथ के पास पहुँचते हैं, उनको सारी कहानी सुनाते हैं कि इतने दिनों से वो लड़कियाँ गायब होती हैं और पुलिस कोई मदद नहीं करती, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही होती है। पीसी अलेक्जेंडर इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं, वहाँ के डीजीपी को बुलाते हैं, बोलते हैं कि इस नौ लड़कियों का सच हमें जानना है और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फोर्स बनाई जाए जो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करे। तो पुलिस की एक टीम बनती है कि इन लड़कियों को कहाँ से कैसे ढूंढा जाए, और जाहिर सी बात है उन पुलिस वालों को सबको पता होता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। उसमें से कुछ जो ईमानदार पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि इसके पीछे ऑटो शंकर का हाथ होगा। फिर कहते हैं कि चलो ठीक है, ऑटो शंकर के बारे में पता कर रहे हैं। उस वक्त एक पुलिस कांस्टेबल था जिसका नाम था आरी, वो ऑटो शंकर के पूरे इतिहास को, उसकी हिस्ट्री को, उसकी कुंडली को बहुत अच्छी तरह जानता था, और वो ये भी जानता था कि कौन कौन से पुलिस वाले करप्ट हैं, कौन कौन से नेता के साथ ऑटो शंकर का उठना बैठना है, वो सारे के सारे राज जानता था। तो ये जो पुलिस की टीम बनी थी उसका जो हेड थे वो इस कांस्टेबल को बुलाते हैं, बोलते हैं कि तुम इस टीम का हिस्सा बनो और ऑटो शंकर की सारी जानकारी हमें दो। इस आरी नाम के कांस्टेबल ने पुलिस की बहुत मदद की, सारी इन्फॉर्मेशन दी, और सारी बातें सबूत सामने आने के बाद पुलिस डिसाइड करती है कि अब ऑटो शंकर को गिरफ्तार करेंगे। पुलिस ने पहले एक एक करके ऑटो शंकर के आदमियों को उठाना शुरू करा। तो सबसे पहले उन्होंने ऑटो शंकर का जो भाई था मोहन, उसके साला जिसका नाम था एल्डन, उसको उठाया। फिर उसकी अच्छे से मार कुटाई हुई और उससे कहा गया या तो आप सरकारी गवाह बन जाओ वरना आप मारे जाओगे। एल्डिन टूट जाता है और वो सारी कहानी ऑटो शंकर की बताता है। उसके बाद ऑटो शंकर और उसके भाई मोहन को पुलिस गिरफ्तार करती है। अगले दिन मद्रास के न्यूज़पेपर और हिंदुस्तान के सारे न्यूज़पेपर में किस तरह का सीरियल किलर ऑटो शंकर था उसकी खबर छपती है, क्योंकि एल्डिन की गवाही के बाद जब पुलिस पेरियार नगर पहुँचती है और कई दीवारें जब खोदी जाती हैं तो उसमें टोटल 6 कंकाल मिलते हैं। जो पहली लड़की जिसको दीवार में चुनवा देता है ऑटो शंकर, डांस बार वाली, उसकी की लाश पूरे 1.5 साल बाद मिलती है। उसके बाद समुंदर में लोगों को बहाने की कहानी भी सामने आती है। ये सारी कहानी सुन के चेन्नई शहर, मद्रास शहर ढहल उठता है। पुलिस फिर ऑटो शंकर, उसके घर की तलाशी लेती है और वहाँ से उनको एक डायरी मिलती है। उस डायरी में ज़्यादातर नाम पुलिस वालों के थे या पॉलिटिशियंस के थे। बहुत सारे फोटोग्राफ्स मिलते हैं पुलिस वाले और पॉलिटिशियंस के, लड़कियों के साथ, ऑटो शंकर के साथ। और उस डायरी में ये भी मेंशन था कि कब किसको कितने पैसे देने हैं और दिए हैं। जिन पुलिस वालों के नाम उस डायरी में थे उनमें से कुछ को सस्पेंड किया गया और बड़े बड़े पुलिस अफसर को बचा लिया गया, और जिन नेताओं के नाम थे उन नेताओं को साइड कर दिया गया। इन पुलिस वालों में से जिनको सस्पेंड किया गया उनमें सबसे बड़ा जो अफसर था वो एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट था, जिसे पहले लंबी छुट्टी पे भेजा गया और उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया। ऑटो शंकर को अदालत में पेश किया जाता है और उस पर 6 लड़कियों के मर्डर का केस चलता है। पर वो जो 9 लड़कियां होती हैं जिसकी वजह से ये पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता। पर ऑटो शंकर खड़ा होकर ये अदालत में कहता है कि वो सारी की सारी मारी जा चुकी हैं पर उनकी लाश नहीं मिलती है। तो कुल मिला के ऑटो शंकर पर 6 मर्डर्स का केस चल रहा था और ऑटो शंकर को चेन्नई सेंट्रल जेल में रखा जाता है। वहाँ से 1990 में कुछ वार्डन्स और छोटे अफसरों की मदद से वो जेल से फरार हो जाता है। भागने के बाद वो पहुँचता है उड़ीसा और उड़ीसा से उसे फिर गिरफ्तार किया जाता है। दूसरी तरफ इसका भाई मोहन, वो भी जेल से भागता है और वो पकड़ाता है 6 महीने बाद पुणे से। कहते हैं कि ये मिली भगत थी जेल के स्टाफ की और ऑटो शंकर की, और ये भी कहा जाता है कि जब तक वो जेल में रहा है वो वहाँ पे भी शाही अंदाज में रहा है। हर चीज़ जो वो चाहता था उसको जेल में मिल जाती थी। उनके पकड़े जाने के बाद कोर्ट ये आदेश करती है कि इनको हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रखा जाए, और उसके बाद 31 मई 1991 को अदालत अपना फैसला सुनाती है, क्योंकि ये सारे जुर्म को ऑटो शंकर कबूल कर चुका था। अदालत का फैसला होता है एल्डिन और ऑटो शंकर दोनों को सजाए मौत दी जाए, कुछ को 6 महीने की सजा दी जाए और कुछ को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। उनमें से एक जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है वो उनमें से एक होता है मोहन। ये केस फिर हाईकोर्ट जाता है, हाईकोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, पर दोनों कोर्ट लोअर कोर्ट का जो फैसला होता है उसको बरकरार रखते हैं। उसके बाद मर्सी पिटीशन के लिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो उस टाइम इंडिया के प्रेसिडेंट थे उनके पास भी एप्लीकेशन जाती है, तो वो भी मर्सी पिटीशन ऑटो शंकर के जुर्म को देखते हुए बर्खास्त कर देते हैं। 27 अप्रैल 1995 सेलम सेंट्रल जेल में ऑटो शंकर को फांसी दी गई, और अगले दिन सारे न्यूज़पेपर में ये खबर थी कि ऑटो शंकर को फांसी दे दी गई है। इस तरह मद्रास का सबसे खतरनाक सीरियल किलर, उस वक्त का सबसे खतरनाक सीरियल किलर की कहानी ख़त्म होती है। पर हैरानी की बात यह है कि जिस एरिया में ऑटो शंकर रहता था पेरियार नगर में, वहाँ के लोग उसको आज भी एक अच्छा इंसान मानते हैं, क्योंकि वो वहाँ लोगों की बहुत मदद किया करता था, सबके साथ अच्छा स्वभाव था उसका। और ऑटो शंकर पे एक फिल्म भी बनी है। ये थी कहानी ऑटो शंकर की। थैंक यू दोस्तों, तलाश इंडिया क्राइम्स के 7वें एपिसोड सुनने के लिए नमस्कार।